चलो चले उस ज्योति धाम में जहाँ शांति बसती है हर शहर में। बाबा बुला रहे उस नूर नगरी में जहाँ प्रेम ही प्रेम है बाबा के संग में। चलो चले उस ज्योति धाम में जहाँ शांति बसती है हर शय में। शुभ भवना की पालकी आत्मिक स्थिति की रोशनी से भरी निकली सवारी निर्मल विचारों की परम धाम की ओर चली। मन वीणा के तारों को बाबा की याद धीरे से सवारे, स्मृति की लगाम थामे नयन निरंतर बाबा को निहारे। चलो चले उस ज्योति धाम में जहाँ शांति बसती है हर शय में। पवित्रता के पुष्प बिछे राहों में, स्मृति सुगंध बह रही हवाओं में, प्रेम की गूंज है हर क्षण में, बाबा से मिलन की चाह में। हर धड़कन कहे लौट चले जहाँ ना कोई बंधन ना कोई डर, परम प्रेम की वो नगरी है, वहीं है अपना घर बाबा का दर। चलो चले उस ज्योति धाम में जहाँ शांति बसती है हर शय में।
ओम शांति। अचानक एक सुबह चीन की एक नगरी में एक स्त्री प्रकट हो जाती है और उसका आकर्षण और सौंदर्य इतना ज्यादा था कि नगर के सारे लोग वहां उपस्थित हो जाते हैं। किसी ने ये नहीं पूछा उससे कि वो कहाँ से आई, क्यों आई, पर जो युवक आए थे उन सब ने कहा कि हमें तुमसे शादी करनी है। उस स्त्री ने कहा, तुम लोग इतने सारे हो, लगभग 300 वो युवक वहाँ उपस्थित थे। उसने कहा कि तुम 300 हो और मैं एक, मैं तो केवल एक से शादी करूंगी। अगर तुम में से कोई बुद्ध के कमल सूत्र लोटस सूत्रास कंठ कर कर आए तो मैं उससे शादी करूंगी। और तुम सब के पास 24 घंटे का समय है, वो सारे युवक अपने अपने घर जाते हैं और सबके अंदर तीव्र वेग है, पैशन है, और रातों रात उन लोटस सूत्र को, लोटस सूत्र बुद्ध की सार सूत्र है जिसमें महात्मा बुद्ध की सारी शिक्षाएं संग्रहित है, धम्मपद से छोटा उसका भी सार। अगले दिन 10 लोग पहुंचते हैं और वो सबको लोटस सूत्र कंठ हो गया है। वो स्त्री कहती है, प्रश्न फिर भी वही है, तुम हो 10, मैं हूं 1, मैं 10 से शादी कैसे करूंगी? हां, यदि तुम 10 में से कोई उन लोटस सूत्र को मुझे समझा सके, मैं उससे शादी करूंगी। वो सारे जाते हैं 10ों और उसे समझने की कोशिश करते हैं और अगले दिन केवल 3 आते हैं। वो कहती है, समस्या फिर भी वही है, तुम 3, मैं 1, मैं 3 से कैसे शादी करूंगी? यदि इन सूत्रों को कोई अपने जीवन में उतारता है, उसका रस चखता है, उसके स्वाद को चखता है, उन सूत्रों की सुगंध यदि किसी के जीवन में है, तो मैं उससे शादी करूंगी। और अगले दिन केवल 1 ही पहुंचता है। कहानी अत्यंत रहस्यमय है और ज़ेन मास्टर्स इसको बार बार दोहराते हैं। अगले दिन 1 ही कुमार आता है और उसने उसको जिया है और उसे भी अनुभव होता है और वो उसे अपने घर ले जाती है। उसका घर उस नगर से बाहर है और अत्यंत सुंदर है। उस युवक ने यह घर वहाँ कभी देखा नहीं था पहले। घर के बाहर उस स्त्री के माता पिता खड़े हैं, वो उसका स्वागत करते हैं और वो स्त्री तब तक घर के अंदर चली जाती है। बातचीत पूरी होने के बाद माता पिता कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, उससे मिलने के लिए वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो घर के अंदर जाता है, घर में कोई भी नहीं है। घर के पीछे एक दरवाज़ा खुला है, वो सोचता है शायद यहीं से गई होगी। पीछे एक बगीचा है, वो बगीचे में चलते जाता है, वहाँ पर पदचिन्ह है, उसके पैरों के निशान। 1-2 मील वो चल कर जाता है पर वो कहीं नहीं है, केवल पैरों के निशान है। और वो एक जगह आकर रुकता है जहाँ नदी बह रही है और वहाँ उसकी सैंडल रखी हुई है। वो युवक आश्चर्यचकित होकर देखता है वो कहाँ चली गई, पर वो कहीं नहीं है। वो पीछे मुड़कर देखता है, ना तो बगीचा है, ना तो वो घर है, ना वो माता पिता है। वो सामने देखता है, नदी भी गायब हो गई और वो सैंडल भी गायब हो गई। उसकी शादी पूरी हुई, कहानी समाप्त। शादी संपन्न और उसे हंसी आती है। वो हंसता है चारों तरफ देखकर। शादी किसके साथ हुई? शून्यता के साथ, उस मौन के साथ, नथिंगनेस के साथ। और वो जोर से हंसता है और स्क्रिप्चर्स ने उसे कहा है, यूनिवर्सल लाफ्टर, लाफ्टर फ्रॉम द बेली। सब कुछ छूट गया, वो रास्ता छूट गया, वो घर छूट गया, वो माँ बाप छूट गए, वो नदी छूट गई, वो सैंडल छूट गया, सब पीछे छूट गया और वो अकेला बचा। वो स्त्री कौन थी? कहानी कहती है शी इज द मास्टर, वो गुरु है। और गुरु धीरे धीरे ले चलता है। एकदम यदि पहुंचा दे नदी के तट पर जहां सब खो जाने वाला है तो ये शॉक हो सकता है। इसलिए एनलाइटनमेंट धीरे 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 ही होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप कंठ कर लेना। ज्ञान को केवल पढ़ना नहीं, ज्ञान को क्या कर लेना, बाय हार्ट। स्टेप नंबर टू, ज्ञान को केवल बाय हार्ट करने से कुछ नहीं होगा, वो तोता रटन है। ज्ञान को क्या करना है, समझना। स्टेप नंबर टू, चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना। भगवान कह रहा है तुम्हारी फिक्र मैंने ली है, फकुर तुमको दिया है। कौन सी फिक्र? और सही में हमने दे दी है या फिर दिस इज पैराडॉक्स? संसार की फिक्र तो नहीं है, परंतु क्या अमृत वेला ही एक टेंशन का कारण है? क्या पुरुषार्थ ही टेंशन का कारण है जिससे निरंतर मन में तनाव रहता है, उठना है, बाबा के कमरे तक पहुंचना है, मुरली जाना है, पहुंचना है, पढ़ना है, समझना है, ये खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे खाना है और वैसे खाना है, मुरली में आया है उठना, खाना, पीना, कर्म करना और सोना। पांच बातें हैं सुबह की अव्यक्त वाणी। जिसकी फिक्र, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, तुम बेफिक्र हो गए, बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा देख रहे हैं। बट क्या पुरुषार्थ ही टेंशन तो नहीं है? ये भी एक चिंतन का विषय है। अमृत वेला होता नहीं कहीं, यही तो टेंशन नहीं है? भट्टी शब्द ही कहीं टेंशन क्रिएट तो नहीं करता है? क्रिएट की बैठो और लंबा लंबा सुनो और योग करो, शब्द परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रथम सूत्र, वो स्त्री कहती है जिसने एक सूत्र कंठ कर लिए, मैं उससे शादी करूंगी। पढ़ना, कई बार पढ़ना, तब जब तक वो याद ना हो जाए तब तक पढ़ना, परंतु उतना पर्याप्त नहीं है। सेकंड स्टेप क्या है, समझना है उसको। कॉन्सेप्ट क्या है? केवल सुनाना या केवल सुनने से केवल औपचारिकताएं पूर्ण होती है, समझ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ। एक है इंफॉर्मेशन, एक है नॉलेज, एक है विजडम, अनुभव। इंफॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर एंड एक्सपीरियंस इज ऑल्सो पावर। तीनों ही पावर है, इसलिए तीनों ही चाहिए। तीसरा सूत्र है उसको जीना, उसकी सुगंध हमारे जीवन में आए, उसका हम स्वरूप बन जाए। ये तीन चीजें जब होगी तब वो गुरु ले जाती है, ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां वो युवक पीछे मुड़कर देखता है और सब कुछ खो गया, कुछ भी नहीं रहा, ना वो घर है, ना वो बगीचा है, ना वो नदी है, ना वो सैंडल है, ना वो माँ बाप है, ना वो पदचिन्ह है। स्वरूप, अनुभव और धीरे धीरे वहां पहुंचना जहां सब छूट जाए, सारे आकर्षण, सारे लगाव, सारे विकार, सारे बंधन जो हमने मन में क्रिएट कर रखे हैं, उसका मैरिज वैसा ही है जो कि ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट और गोपीज ऑफ गोपी वल्लभ के लिए कहा गया है। जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है उसके लिए कहा गया है। तो आज के इस सत्र में हम क्लास कम, ज्ञान की चर्चा कम, कुछ योग के प्रयोग करेंगे और टॉपिक है परम धाम। टॉपिक है परम धाम। परम धाम की हम सात प्रकार की अलग अलग ड्रिल्स देखेंगे। किस तरह से ड्रिल करें? सबसे पहली ड्रिल है विजुअलाइजेशन। किसका विजुअलाइजेशन? परम धाम का विजुअलाइजेशन। वो कैसा है देखना? कैसा है वो? कलर क्या है? शेप क्या है? साइज क्या है? स्वरूप क्या है? डिस्टेंस कैसा है? कंटेंट क्या है? वो सारी बातें। तो जब भी अमृत वेला या नुमाशाम हम योग में बैठे तो सबसे पहला एक अभ्यास करना है, वो है विजुलाइज करना उसको। उसका कोई रंग नहीं है पर दूर से देखो तो शायद वो गोल्डन रेड भासता हो। वहां कोई दीवारें नहीं, वहां कोई दिशा नहीं, वहां कोई डायरेक्शंस नहीं। क्या नहीं है उसका चिंतन करना है, क्योंकि मनुष्य का मन कॉन्ट्रास्ट से ज्यादा समझता है। मूवमेंट नहीं, आवाज नहीं, हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, आग नहीं, प्रकाश, परंतु ऐसा प्रकाश नहीं जो यहां है। ना सूरज है, ना चांद है, ना सितारे हैं। उसका आकार कैसा है? किसी महल की तरह है या किसी ग्रह की तरह या किसी सितारे की तरह, या फिर आकार ही नहीं है, अनाकार है, चारों तरफ फैला हुआ है, बेअंत है, असीम है, मौन का समंदर है। ये सारी पॉइंट्स मन में लाना है और उसको क्या करना है? देखना, विजुलाइज करना। वास्तव में जाने से भी मन से जाना अधिक शक्तिशाली है। मन की आंखों से देखना, ये ऐसा है। ये सबसे पहली विधि है, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, परमधाम के सारे नाम मन में लाना और एक एक नाम के साथ स्थित हो जाना, एक एक नाम में स्थित हो जाना। उदाहरण उदाहरण, शांति धाम कहा तो शांति का अनुभव, मुक्ति धाम कहा तो मैं मुक्त हूं का अनुभव, निर्वाण कहा तो मैं सभी आवास से मुक्त परे, घर कहा तो मैं घर में हूं, आखिर मैं अपने घर में आ गया, ये संकल्प। अब यहां से कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन का कारण है कुछ करना है और कुछ बनना है और कुछ होना है और कहीं पहुंचना है। नोवेयर टू रीच, नथिंग टू बिकम, नथिंग टू डू की अवस्था। अलग अलग उसके नाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, स्वीट होम है, निराकारी दुनिया है, मणियों का आगार है, अलग अलग शब्द, अलग अलग नाम, सेम सेम शब्द यदि रिपीट किए जाए तो उसकी पावर कम हो जाती है। वही वही अगर हम रिपीट करते रहे, उन्हीं शब्दों का अगर प्रयत्न ये करते रहे प्रयोग ज्ञान में, जो एक नवीनता लानी है वो है शब्दों को बदलना। क्या करना है? शब्दों को बदलना। वही वही शब्द अगर रहे तो उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। और ब्राह्मणों के रग रग में मुरली का प्रभाव है, वही शब्द है। यहां तक कि कल एक कुमार आया था हमारे ओपीडी में, हमने कहा क्या तकलीफ है, वो कहते थे आलस अलबेलापन ज्यादा आ गया है। कंप्लेंट भी ज्ञान की भाषा में है। विजुअलाइज करना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। विजुअलाइजेशन को कहा जाता है क्रिएटिव इमेजरी। एक बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं, क्रिएटिव इमेजरी नाम की, हिंदी में और इंग्लिश में। उसमें विजुअलाइज कैसे करना लेखक ने लिखा है, क्योंकि विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। किसी चीज को अगर हम विजुअलाइज कर लेते हैं, एक एथलीट है उसको फर्स्ट आना है मैराथन में, वो पहले से ही देखने लगता है, पहले से ही उसको विजुअलाइज कर लेता है। यहां तक कि उसको रास्तों का भी विजुअलाइजेशन वो करता है। जब उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है 2-3 मास में, किस किस रास्ते से मुझे दौड़ना है वो पहले ही विजुअलाइज करता है। सुबह कितने बजे उठना है और उठ के मुझे कितना दौड़ना है और किस रास्ते से दौड़ना है और कहां टर्न करना है, ये सब कुछ मन की आंखों से देख लेता है। इसलिए एक्चुअली में जब वो करता है तो बहुत सहज हो जाता है। जिम में जाने से पहले ही जिम का पूरा विजुअलाइजेशन कि आज क्या करना है, बैक करना है, कोर करना है, आर्म्स का करना है, लेग्स करना है, चेस्ट वर्कआउट करना है, एथलीट जिम गोअर जाने से पहले ही देख लेता है। तो मन की आंखों से देखना, एक ऐसा स्थान जहां विचार नहीं है, जहां संकल्प नहीं है, एक ऐसा स्थान जहां कोई रंग नहीं है, जहां कोई तत्व नहीं है इस संसार का, उसको देखना, मन की आंखों से देखना। और सेकंड स्टेप, अलग अलग नाम। क्या करना है उसके? अलग अलग नाम मन में लाने हैं। हम लोगों ने एक बार लिस्ट निकाली थी परमधाम के 108 नाम, तो आप सबके लिए ये होमवर्क नंबर 2 भट्टी के बात करना आपस में डिस्कस करके कि परम धाम को क्या क्या नाम दिया जा सकता है। एक तो वो सारे नाम जो साकार मुरलियों में आए हैं, एक जो अव्यक्त मुरलियों में आए हैं, संदेशों में आए हैं, और उसके बाद फिर चिंतन से क्या क्या नाम हो सकते हैं, शिवालय से लेकर भगवान के घर से लेकर विश्राम धाम, विश्राम स्थान, ब्रह्मांड, ब्रह्म घर, ब्रह्मलोक, अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो मन में वो नाम लाना है और क्या करना है, फिर उसका अनुभव करना है। मैं मुक्ति धाम में हूं तो मैं कैसे हूं? पूर्ण रूप से मुक्त हूं, ऑल डिजिटल एडिक्शन से मुक्त हूं, सारे शॉर्ट्स और रील्स से मुक्त हूं, हर चीज से मुक्त हूं, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, मैं मुक्त हूं, संबंध में जो फंस गए हैं उससे भी मुक्त हूं, मैं स्वतंत्र हूँ, कितना अच्छा संकल्प है। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं गुलाम नहीं। संकल्पों का आधार लेकर संकल्पों से पार जाना है। तो सेकंड ड्रिल कौन सी है? परम धाम के अलग अलग क्या नाम, एक एक नाम याद करना, एक एक में स्थित होना। हमारा लक्ष्य है परम धाम की जो ड्रिल है उसको अधिक से अधिक की जाए। अमृत वेले में धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है। अमृत वेला केवल ये ना हो कि उठना है और एक जबरदस्ती उठना है और बैठना है और कुछ एक सेट कमेंट्री है बस उतनी पूरी करनी है, वो कोई एक काम और एक औपचारिकता न रहे। उसमें क्या हो? नवीनता, सम इन्वेंशन, सम डिस्कवरी, सम आविष्कार, कोई इनोवेशन। अगर वही वही व्यक्ति करते रहता है यांत्रिक अगर योग होगा। ब्राह्मण जीवन का एक बड़ा पाप है यांत्रिक हो जाना, मैकेनिकल। उठो, अमृत वेला करो, फिर मुरली सुनो, फिर जाओ, फिर खाओ, फिर दिन भर सेवा करो, शाम का योग करो, फिर से ज्ञान का कुछ करो और फिर सो जाओ, और मोबाइल के साथ जो करते हो वो अलग एडिशन। ये आज पूरा हुआ, फिर से उठो, फिर से अमृत, फिर से भोजन, वही फिर दूसरे दिन वही, सेम स्टेज प्रोग्राम्स, परिचय, मालाएं, कैंडल लाइटनिंग, सेम। लॉन्ग रन में ये क्रिएट करता है बर्नआउट। सेम चीज क्या करती है? एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है। इसलिए क्या चाहिए? न्यूनेस। आज भी कहा ना, गुजरात, नवीनता। हर चीज में नवीनता हो, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में। अगर सेम चीज हम रिपीट करते रहे तो एक बोर्डम क्रिएट हो जाता है। सेम क्लास, सेम शब्द, काम महा शत्रु आदि मध्य अंत दुख देता है, बाप आए हैं, तुम्हें घर जाना है, दिव्य गुण धारण करने, विनाश सामने खड़ा है, फरिश्ता बनना है, देह सहित देह के सारे संबंधों को भूल, मुझ बाप को याद करना है, सारे शब्द सेम। सो ब्रेक द बोर्डम। ज्ञान में नवीनता, योग में नवीनता, धारणा में नवीनता, सेवाओं में नवीनता। सेम सेवानी, न्यू आइडियाज। और न्यू आइडियाज की टचिंग अपने आप सुबह के आश्चर्य अवस्था में होती है। तीसरा अभ्यास, आत्मा के साथ स्वरूप। परम धाम में आत्मा के अनादि संस्कार कौन से? सबसे पहला निर्वाण। आत्मा कैसी है वहां पर? आवास से परे। दूसरा निर्बंधन। आत्मा कैसी है परम धाम में? बंधन से मुक्त, निराकार। कैसी है वहां पर? अशरीरी, निराकार, शरीर नहीं। कैसी है वहां पर? पांच तत्वों के आकर्षण से मुक्त। कैसी है वहां पर? अपने सातों स्वरूपों में स्थित। आत्मा के जो स्वरूप है मूल, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, उसमें वो स्थित है वहां पर। निर्बंधन, निराकार, निर्वाण, निर्लेप, अप्रभावित स्थिति में है वहां पर। उसका चिंतन करना कि मेरा मूल स्वरूप ये है, न ऊपर है न नीचे है, न दाए न बाए। परम धाम में कोई दिशाएं नहीं, कोई दीवारें नहीं, कोई कंपार्टमेंट्स नहीं, स्थूल कोई इस तरह का एकोमोडेशन नहीं है। अपने आप टीचर बच्चियों को पूछता है स्कूल में कि धरती गिरती क्यों नहीं, धरती क्यों नहीं गिरती, एक लड़की हाथ खड़ा करती और पूछती है वेयर इट शैल फॉल, क्या पूछती है, वो कहाँ गिरेगी। बाबा कहते हैं पोलर ही पोलर, पोलर ही पोलर, परम धाम कोई एक छोटा सा स्थान नहीं है, फैला हुआ है, बहुत बेहद का है, असीम है, चारों तरफ ऊपर। या फिर हम जो क्लास की बुक में दिखाते हैं ये धरती, धरती के ऊपर सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन के ऊपर परम धाम। अगर कोई आपसे पूछे परम धाम के ऊपर क्या है बताओ आप, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। चित्र में ऐसे ही दिखाते हो ना, ये चित्र है, ये धरती, ये सूक्ष्म वतन, ये परम धाम। उत्तर क्या होगा आपका, वो बोलेगा ये परम धाम आप दिखा रहे हो ना, इसके ऊपर क्या है। यदि हम ये बिंदु कर दें यहां पर और ये परम धाम है और यहां सूक्ष्म वतन है और ये जो थर्ड है यहां धरती, इसका अगर क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो वो चित्र है फिर, टू डायमेंशनल। तो शिव बाबा यदि केंद्र में है, कुछ कुछ चित्र है परम धाम के जहां परम धाम के ऊपर भी सितारे दिखाए हुए हैं, वो ऐसा नहीं है धरती ये और परम धाम हो गया, वो अगर केंद्र में हम दिखाए तो चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ भी नहीं है, हाइट डेप्थ नहीं है, दसों दिशाएं यहां है ही नहीं। ये सूक्ष्म वतन, इसका कलर और उसका कलर, पांच तत्व और ब्रह्म तत्व का कलर अगर मिक्स हो जाए तो वो सूक्ष्म वतन का कलर है फिर। तो शायद इसको ऐसा भी समझा जा सकता है। तो थर्ड ड्रिल कौन सी करनी है, आत्मा के मूल स्वरूप का अभ्यास। चालू कहां से करेंगे, ज्ञान स्वरूप पर, ज्ञान मर्ज है वहां, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, 5 मिनट में तो इसमें निकल जाएगा। हमको परम धाम की ड्रिल कम से कम 1 घंटा खींचनी है सुबह सुबह, तो आनंद आएगा कुछ अमृत वेले का, नहीं तो गए बैठे भागते भागते, गुड मॉर्निंग मैं आत्मा हूं, तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, तुम ये भी हो, वरदान, तिलक, सूक्ष्म वतन, बाबा से हाथ गले, दृष्टि, परम धाम को टच, देवता, 16 कला संपन्न, नीचे भक्तों को सकाश, मास्टर सर्वशक्तिवान, फरिश्ता इसको सकाश उसको सकाश, चलो हो गए 4:45। अब क्या करना है, मुरली को टाइम है, बीच में अच्छा पीरियड है और इस पीरियड में जो नींद का आनंद है, बिस्तर पुकारता है त्यज अगर मगर आ जाओ इधर परमात्मा शरण की बाहों में, बीत चली दुख भरी रात स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूं, कौन कहता है, बिस्तर। फिर उठेंगे 6 बजे 6:30 बजे और फिर मुरली। दिस इज अ यांत्रिक योग। सबसे पहला तो अमृत वेले का टाइम पीरियड बढ़ाना होगा, अगर 3:45 और 3:30 बजे उठ रहे हैं तो कैसे होगा काम, इतने बड़े बड़े काम करने हैं। अभी अभी साकार मुरली आई थी, संसार के लोग 8 घंटा सोते हैं, आगे की लाइन क्या थी बड़ी भारी लाइन थी, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए थी, पर उसी में था कि ठीक है अभी अभी दूसरे में था, 4 बजे नहीं तो कम, 2 बजे नहीं तो कम से कम 3 बजे और 3 बजे नहीं तो कम से कम 4, वहां तक भगवान ने छोड़ा, ब्राह्मणों ने थोड़ा आगे बढ़ाया, 4 बजे नहीं तो कम से कम 4:30 और फिर कभी कभी 4:45 और कभी कभी तो ठीक है, सारा संगम युग ही अमृत वेला है। जल्दी उठने की विधि है जल्दी सोना, 9 PM या 8 PM डिजिटल कर्फ्यू लगा देना है, 8 PM डिजिटल कर्फ्यू, ऑफलाइन हो जाना है। आत्मा ऑनलाइन, दुनिया ऑफलाइन, तो ये कार्य होगा। तो सुबह सुबह क्या करना है, पहला विजुअलाइज परम धाम का विजुअलाइजेशन, उसके बाद परम धाम के सारे नाम, उसके बाद मैं तीसरा बताया आत्मा के स्वरूप, कौन कौन से स्वरूप है, निर्वाण, मैं आवाज से परे हूँ, निर्बंधन, मैं आत्मा निर्बंधन हूँ, निर्लेप, आत्मा निर्लेप है नहीं परंतु मैं निर्लेप हूँ, ये उसका समान है और परम धाम की स्थिति भी है, चौथा निराकार हूँ, पांचवा सभी पांच तत्वों के आकर्षण से मुक्त हूँ अर्थात देह के आकर्षण से मुक्त हूँ, ये शरीर क्या है, तत्वों का बना हुआ है, इसका क्या आकर्षण, सारी दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम या आकर्षण ही तो है, मैं उसी से मुक्त हो गया हूँ। अगला ये सातों स्वरूप आत्मा के, तो ये हो गई तीसरी ड्रिल। चौथी ड्रिल शिव बाबा, चौथी ड्रिल कौन सी, शिव बाबा, शिव बाबा का अपना कंपैरिजन सात बातों से किया है स्वयं का, उसको उस रूप में देखना, सबसे पहला बिंदी, वो कैसा है, बिंदी, उसको बिंदी रूप में परमधाम में हम देख रहे हैं, उससे दृष्टि ले रहे हैं, ये अनुभव। दूसरा अनुभव ज्योति, वो क्या है, ज्योति, उसको ज्योति रूप में देखना कि ये ज्योति जल रही है, उससे मेरी ज्योति जग रही है। तीसरा वो बीज है, बाबा कहते हैं मैं चैतन्य बीज हूँ, सीड ऑफ दिस वर्ल्ड, सीड से उसकी तुलना खुद की बाबा ने की है। ज्योति, सीड, बीज, परमधाम में अनुभव करना ताकि हम लंबा समय परमधाम में टिक सके, उसको डॉट के रूप में देखना, बिंदी के रूप में थोड़े देर उसको, वो हो गया, उसके बाद में एक ज्योति के रूप में देखना, फिर बीज के रूप में देखना, उसके बाद में और किससे तुलना की है बाबा ने स्वयं की, स्टार, किसके रूप में देखना, उसे एक सितारे के रूप में देखना। चौथा सागर, पांच, चौथा सागर, पांचवा सागर, उसके बाद में सूर्य और उसके बाद में पहाड़, स्वीट का पहाड़, कितने हो गए, सात। तो ये सातों स्वरूप में उसको देखना तो हम परम धाम में लंबा समय टिक सकेंगे। सबसे पहला बीज, ऐसा करेंगे सभी, सबसे पहला बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा वो बीज है, चलो ज्योति, ये ज्योति बीज, चैतन्य बीज, फिर उसके बाद में वो है स्टार, उसके बाद में वो है सागर, उसके बाद में वो है सूर्य और उसके बाद में वो है पहाड़। उसको अलग अलग रूप से याद करना है, ये ज्ञान जो है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, इस ज्ञान को समझने के लिए, मूर्त बनाने के लिए, अमूर्त को मूर्त बनाने के लिए, अनमैनिफेस्ट को मैनिफेस्ट बनाने के लिए भगवान यहाँ के उदाहरण देता है, इस दुनिया के, कौन सा स्टार, वो कोई स्टार है क्या, कौन सा बीज, कौन सी ज्योति, कौन सा बिंदु, ऐसा कुछ है नहीं, पर वो हमें समझने के लिए ये सब उदाहरण देता है, उस रूप में उसको याद करना है और ये सारा कार्य अमृत वेले करना है। अगर अमृत वेला सही हो गया, अमृत वेले का संकल्प, दिन भर का भाग्य अपने आप लिखा जाएगा। अमृत वेले गाड़ी को पटरी पर डाल दो, अपने आप दिन में जो कुछ परिस्थिति आएगी सब अपने आप, हमें अपने आप उत्तर मिलेगा उसका क्या करना है। तो अभी हम यहां तक कुछ प्रयोग करेंगे, रेड लाइट। और उससे पहले यहाँ जो भी बैठे हैं, एक एक को हम एक एक नाम देंगे परम धाम के। तो ये कुछ नाम है यहाँ पर। एक एक भाई जो यहाँ बैठे हैं, आप अपना नाम याद रखना है। तो जैसे हम वो नाम लेंगे, आपको इधर आना है उस समय। शांति धाम खड़े हो जाएंगे, फिर बैठ जाओ। फर्स्ट शांति धाम बैठ जाओ, अपना नाम याद रखना है। दूसरा मुक्ति धाम बैठ जाए। तीसरा निराकारी दुनिया। चौथा ब्रह्मांड। पांचवा मूल वतन। छठवा कोई भी खड़े हो जाओ। छठवा भगवान का घर। अगला स्वदेश, अपना नाम याद रखना है। अगला मणियों का आगार। अगला पावन धाम। नेक्स्ट पीछे पीछे और भी कोई है? हाँ भाई जी, पावन धाम। नेक्स्ट विश्राम स्थल। अगला रूहानी तीर्थ। मीठा धाम। परलोक। ऊंचे ते ऊंचा धाम। ज्योतिलोक। परम धाम। और लास्ट को एक ले लो बहनों की तरफ से, परम धाम। यीशु बहन, ठीक है? तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, कुछ देर के लिए आंखें बंद करेंगे। म्यूजिक। मन की आंखों से परम धाम को देखेंगे। ये शरीर यहीं छूट गया, मैं आत्मा परम धाम में हूं। परम धाम का एक अदृश्य गेट है, उसको खोलो, भीतर प्रवेश। लाल प्रकाश की दुनिया है, ना कोई दीवार है, ना कोई पार्टीशन। चारों तरफ मौन का महासागर है। ज्योतिर्मयी आत्माएं हैं, बीच में परम ज्योति है। न अग्नि है, न सांसारिक प्रकाश, न सूर्य, न चांद, न सितारे। न ठंडी है, न गर्मी। नो मूवमेंट, कोई हलचल नहीं है। सांसारिक कोई इमोशंस नहीं है। चक्कर लगाएंगे इस रूहानी नगरी की, देखेंगे मन की आंखों से ये कैसा लोक है, ये कैसी दुनिया है। ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व, ये क्या है और क्यों इतनी शांति का अनुभव हो रहा है। यही मेरा घर है। मन की आंखों से परम धाम में यहां वहां घूमेंगे, साक्षी होकर परम धाम को देखेंगे। उस संसार से कितना अलग ये संसार है। कोई आवाज नहीं, कोई बेचैनी नहीं, अब मैं आत्मा स्वयं के स्वरूप को देख रही हूं। आवाज से परे निर्वाण में हूं। कोई बंधन नहीं, संपूर्ण स्वतंत्रता, निराकार, सभी आकर्षणों से परे, राग द्वेष से मुक्त, निर्बंधन, निराकार, निर्विकार, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप हूं। अपने सामने देख रही हूं महाज्योति को, शिव बाबा डॉट के रूप में, बिंदी के रूप में। ज्योति के रूप में है, चैतन्य बीज है, सितारा है, सागर लहरा रहा है, इस सागर में मैं डूब रही हूं। ज्ञान, पवित्रता, सुख शांति का सागर, आनंद प्रेम शक्ति का सागर, उसकी परतें हैं और उन परतों में मैं डूब रही हूं। सूर्य है, सन गेजिंग, सूर्य को देख रही हूं, सूर्य की तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। वो पहाड़ है मधुरता का, उस पहाड़ को निहार रही हूं। सभी आंखें खोलेंगे, शांति धाम में हूं, शांति धाम जिनका नाम था वो इधर आ जाएंगे और अनुभव करेंगे सभी केवल शांति का। चारों तरफ शांति ही शांति, मैं शांति धाम में हूं। मन अत्यंत शांत हो चुका है, मुक्ति धाम, मैं मुक्त हूं। याद करेंगे कौन कौन से मेरे बंधन हैं, कौन कौन सी बेड़िया है, कौन कौन से कारागार है, जेल है। मैं अनुभव कर रही हूं, मैं सभी बेड़ियों से, सलाखों से, पिंजरों से, केजेस से मुक्त हूं। मैं मुक्ति धाम में हूं। यह पूरा हॉल ही मुक्ति धाम है। निराकारी दुनिया, मैं निराकार हूं, अनाकार हूं, देह से मुक्त, देह की भूख, देह के की प्यास, देह की इच्छा, देह की तृष्णा, देह की वासनाएं, देह के धर्म, देह की बातें, सबसे मुक्त। मूल वतन, मैं अपने ओरिजिनल वतन में हूं। मन में शब्द दोहराएंगे और अनुभव करेंगे। ब्रह्मांड में चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड, छठा तत्व। आत्माओं का असली घर, भगवान का घर। मैं अपने पिता के घर में हूं, सुरक्षित। सुकून से भरी हुई अनुभव। अपने स्वदेश में आ गई हूं। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं वो मेरा घर नहीं, मेरा घर ये है। पराए संसार से स्व के संसार में आई हूं, बर्थ प्लेस पर आई हूं। मणियों का आगार है, अनुभव करेंगे सभी। चारों तरफ केवल मणियां ही मणियां हैं। एक बार सभी मौन में अपने ही स्थान पर उठेंगे और एक गोल चक्कर लगाएंगे और देखेंगे इस हॉल में केवल मणियां हैं और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत धीरे, अव्यक्त स्थिति, अशरीरी अवस्था, मौन। मूव क्लॉकवाइज, केवल मणियां दिखाई दे रही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, शरीर तो है ही नहीं। केवल मणियां, चारों ओर अव्यक्त धारा प्रवाहित है। बैठ जाएंगे, आवाज नहीं। मैं छठे तत्व में हूं, छठे तत्व में, पावन धाम में हूं। इतनी पवित्रता, रोम रोम में पवित्रता का अनुभव, अंग अंग में पवित्रता का अनुभव। सारे हॉल में पवित्रता की तरंगे, पवित्रता का जैसे सैलाब, पवित्रता की जैसे बाढ़ आई है। मैं विश्राम स्थल में हूं, परम सुकून और परम आराम की अवस्था। सारी थकान मिट गई, रूहानी तीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ, वहां की हवाओं में पवित्रता है। केवल यहां आने मात्र से, टच से केवल चेतना शुद्ध हुई है। मीठे इस धाम में हूं, मिठास का अनुभव। सारी कड़वाहट समाप्त। लोक में हूं, यही मेरा लोक है। उस साकार दुनिया से परे, सूरज चांद और सितारों से पार, एक दूसरे डायमेंशन में हूं। ऊंचे ते ऊंचे धाम में हूं, यहां से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ज्योति लोक में हो। चारों तरफ ज्योतियां चमक रही है। मैं परम धाम में हूं, मैं परम धाम में हूं। सभी स्थिर और स्वयं को परम धाम में अनुभव करेंगे। कुछ पल के लिए आंखें खोल दो, बंद कर दो, अनुभव। शांति धाम, मुक्ति धाम, निराकारी दुनिया, ब्रह्मांड, मूल वतन, भगवान का घर, आत्माओं का असली घर, स्वदेश, मणियों का आगार, छठा तत्व, पावन धाम, विश्राम स्थल, रूहानी तीर्थ, मीठा धाम, परलोक, ऊंचे ते ऊंचा धाम, ज्योति लोक, परम धाम। आंखें खोलेंगे, ओम शांति। सभी खड़े ही रहेंगे जो स्टेज पर है। व्हाइट लाइट। अभी एक और ड्रिल करेंगे, जब ट्रैफिक कंट्रोल हो जाने देते हैं, उसके बाद। जब हम कहेंगे स्थूल वतन तो दो बार ताली बजानी है, ऐसे और ऐसे। प्रैक्टिस स्थूल वतन। जब हम कहेंगे सूक्ष्म वतन तो ऐसे करना है, और जब हम कहेंगे परम धाम तो दोनों हाथ ऊपर। इसकी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। परम धाम, स्थूल वतन, सभी जो स्टेज पर है वो भी परम धाम स्थूल वतन, परम धाम स्थूल वतन, परम धाम सूक्ष्म वतन, परम धाम सूक्ष्म वतन, परम धाम स्थूल वतन, परम धाम सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम स्थूल वतन, स्थूल वतन, स्थूल वतन, परम धाम 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 सूक्ष्म वतन। सब पास। ओम शांति। सभी स्टेज पर जाएंगे, जो स्टेज पर है सॉरी नीचे जाएंगे, स्टेज पे मत आना, स्टेज की भी बहुत माया है। अमेरिकन एक एक्टर था जिसका नाम था चार्ल्स कॉगलैन। मरने के पहले उसने वसीयत लिखी थी कि मेरी जहां जहां मेरा जन्म हुआ है वहीं पर मुझे दफनाया जाए मरने के बाद। जब उसने वसीयत लिखी थी वो बहुत अमीर था और उसका बहुत नाम था और बड़ा फेमस एक्टर था, पर जब उसकी मृत्यु हुई 1900 में चार्ल्स कॉगलैन की, तब तक वो अत्यंत गरीब था, उसकी फिल्में नहीं चली थी, फ्लॉप हुई थी, जो भी हुआ था, लोगों ने फिर ध्यान नहीं दिया उसकी वसीयत पर। उसने कहा था मेरा जन्म जहां हुआ है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कनाडा, वहां मुझे दफनाया जाए, और वो इस समय था टेक्सास में, लगभग 2000 मील का अंतर था, परंतु लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उसको वहीं दफना दिया। पर उसकी इच्छा थी कि मुझे मेरे गांव में दफनाया जाए, और नियति ने ऐसा खेल खेला कि उसी रात एक तूफान आया 1900 में, और ऐसा हरिकेन कि उसकी जो कब्र थी वो कब्र नीचे से बाहर आई, और कई दूर कुछ किलोमीटर दूर समुद्र था, उस समुद्र में कॉफिन वो चली गई, और कई वर्षों तक समुद्र में घूमती रही। 1907 में उसका जो गांव है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कनाडा में, लगभग 2000 मील दूर, वहां कुछ लोगों को समुद्र तट पर वो ताबूत मिला, और उसमें इतने सालों तक उसका शरीर पूरा जीर्ण हो गया था, फिर भी चेहरा पहचान में आ रहा था, और लोगों ने पहचान लिया ये तो हमारे ही गांव का है, ये वही एक्टर है चार्ल्स कॉगलैन, और गांव वालों ने उसको वहां दफनाया। क्या संकल्प मरने के बाद भी काम करता है? उसका संकल्प था कि मैं अपने ही गांव में दफना जाना चाहिए, परंतु दफनाया कहीं और गया, पर उसको वापस वहीं पहुंचाया गया, उस संकल्प ने पहुंचा दिया। ये प्यार है हर व्यक्ति का अपने घर से, हर आत्मा में ये संस्कार है। हमारी जितनी खोज है, वास्तव में कोई खोज और खोज है ही नहीं, सारी खोज परम धाम की खोज है। हमारी जितनी इच्छा है वो हर इच्छा परम धाम की इच्छा है। हमारी सारी बेचैनियां इस दुनिया की है ही नहीं, वो उस परम धाम में जाने की बेचैनी है। हमारा सारा मिलन शरीरों का इस संसार का जो हो रहा है, और जो वासनाएं है और जो काम विकार है और देह की इच्छाएं है और देह की तृप्तियां, ये वास्तव में उस परम धाम से मिलन की इच्छा है। वो पूर्ण नहीं हो रही है, उसको हम इस तल पर तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सारे प्रयास अतृप्त है, सारी खोज अतृप्त है, क्योंकि आत्मा की मूल प्यास परम धाम की है। किसी ने प्रश्न पूछा था, ब्राह्मण आत्माएं परम धाम में रुकती ही नहीं है, थोड़ा देर रुकती आ जाती है और फिर कहते हो भर घर को याद करो, घर को याद करो, ये कैसे होगा। हाँ वो आत्माएं ठीक है जो आधा कल्प परम धाम में रुकी और फिर द्वापर से आती है, महान आत्माएं होती है, उनको संन्यास की तरफ आकर्षण होता है, अहम ब्रह्मस्मि सर्व खलविदम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म में रही है, हम तो नहीं रही नहीं है, फिर वो हमारा घर कैसा। घर होने के लिए उत्तर है ड्यूरेशन की आवश्यकता नहीं है, हमारा घर होना परम धाम उसके ड्यूरेशन पर निर्भर नहीं है। किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ और तुरंत विदेश चला गया, पर जीवन भर क्या कहते रहता है, भारत ही मेरी जन्मभूमि है, वो रहा भी नहीं भारत में। उसी तरह आत्माओं के मूल जन्म स्थान है वो, अगर देखा जाए तो वहीं से आई है, इसलिए वहीं लौटने की प्यास चेतना में रहती है। तो पहला हमने देखा विजुलाइज करना, दूसरा हमने देखा परमधाम के भिन्न भिन्न नामों पर योग करना, तीसरा हमने देखा आत्मा का मूल स्वरूप मूल स्टेज क्या है परमधाम में, चौथा हमने देखा शिव बाबा के सात स्वरूप उसको सामने लाना और उसको योग करना, पांचवा सकाश क्या करना है, परम धाम में बैठकर सकाश देनी है। किस किस को सकाश देंगे, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी लिस्ट निकाली थी, 55 बातें थी उसमें, पांच 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 की लिस्ट थी, पांच तत्व पांच खंड, यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, अफ्रीका में जाओ, एशिया में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, पांच प्रकार की आत्माएं, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, अपवित्र आत्माएं, भटकती आत्माएं, पतित आत्माएं, उनको सकाश, पांच प्रकार की सत्ता है, धर्म सत्ता, बहुत हलचल चल रही है धर्म सत्ता में, चल रही है कि नहीं चल रही है, चल रही है ना, पता है ना, विज्ञान सत्ता, राज सत्ता, प्रकृति की सत्ता और लौकिक ज्ञान की सत्ता, ये पांच सत्ताएं हैं, उनको सकाश। मधुबन के पांच स्थान ऊपर के, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, म्यूजियम, हॉस्पिटल, नीचे शांतिवन के पांच स्थान, पांच प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, पांच प्रकार की आत्माएं, आत्माएं तो बहुत सारी है, पांच प्रकार की आत्माएं जिनसे हमारा गहरा हिसाब है, एक वो आत्माएं जिनसे गहरा हिसाब है, एक वो आत्माएं जिनसे अभी हिसाब हुआ नहीं, वो आने वाली है, जैसे आज दिन भर की कोई नई आत्मा आ जाएगी अचानक, उसको पहले ही सकाश। एक ऐसी आत्मा जो बहुत टफ है संस्कारों में, उसको सकाश, किसी एक विशेष आत्मा को सकाश, हमने एक पूरा एक लिस्ट भी है, आप चाहे तो वो आपको भेजेंगे। मधुबन के अलग अलग स्थान, अलग अलग प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, सारे कुमार, सारी कुमारियां, टीचर्स, अदर कुमार, माताएं, पांच। स्थान गीता पाठशाला सेंटर, रिट्रीट सेंटर, वो सेंटर जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो सेंटर जहां बहनें जाती और सेवा करके आ जाती, वहां रहते नहीं, वो स्थान, वो पांच प्रकार के स्थान, ऐसे 55 की एक लिस्ट हम लोगों ने बनाई। तो करना क्या है, सकाश कहां से, परम धाम से, कि मैं वहां हूं और वहां से किरणें भेज रहा हूं, क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी है, बहुत उदास है, और ब्राह्मण आत्माओं में भी एक टेंशन का कारण है पुरुषार्थ, दुख का कारण क्या है, पुरुषार्थ नहीं होता है इसलिए डिप्रेशन में, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, पुरुषार्थ नहीं होता है, करना बहुत है, ये भी करूं वो भी करूं पर क्या करूं, वहां जाते ही सेवाएं 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 का इतना विस्तार है कि खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, बाकी सब चीजें करते, खुद के लिए टाइम टाइम मिलता नहीं। तो अमृत वेला ये कार्य करना है, जो वो सूर्य है जो किरणें फैलाता है उसे प्रकाश कहते हैं, और ज्ञान सूर्य जो किरणें फैलाता है उसको सकाश कहते हैं। तो वो ज्ञान सूर्य, हम मास्टर ज्ञान सूर्य, हमसे जो किरणें निकलती है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। संसार वाइब्रेशंस है, हम किस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। यदि कोई ऑनलाइन है और कुछ विकार में वो देख रहा है तो वो उस समय संसार की जितनी विकारी आत्मा है उन सब चेतनाओं से जुड़ जाता है। और यदि हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प है और महान संकल्प है और पवित्र संकल्प है तो हम अपने आप इस सृष्टि की जितनी महान आत्माएं हैं, हमारी कॉन्शियसनेस क्राइस्ट और बुद्ध और ब्रह्मा और दादियों के कॉन्शियसनेस से मिल जाएगी। अपने आप नए नए विचार, श्रेष्ठ विचार आएंगे। प्यूरिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जितनी अधिक प्यूरिटी उतनी अधिक क्रिएटिविटी, नहीं तो वही 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 योग की कमेंट्री, वही योग, वही क्लास, सेम वही। वेयर इज द स्पार्क एंड वेयर इज द एनिमेशन? वाघ नहीं आएगी। एक तीव्र इच्छा भीतर जगानी है, जैसे उस एक्टर की थी कि मेरे गांव में मुझे दफनाया जाए। 7 साल के बाद अपने गांव में उसको दफनाया गया। कैसा आश्चर्य है। होमिंग कॉफिन नाम से ये फेमस है ये कहानी, इस पर मूवीज भी बनी है, होमिंग कॉफिन। तो पांचवा क्या है? परम धाम से सकाश, सूक्ष्म वतन से सकाश, धरती के ऊपर से सकाश, वो अलग। फरिश्ता स्थिति से सकाश, बैठे बैठे सकाश, चलते फिरते सकाश, वो अलग। हम बात कर रहे हैं केवल परम धाम की, वहां बैठकर सकाश। परम धाम ऊपर शिव बाबा, नीचे मैं और मुझसे किरणें नीचे जा रही है, सबको जा रही है, कोई भी हो सबको जा रही है। छठवां पॉइंट, संयुक्त कंबाइंड स्टेज। परम धाम में किसका अनुभव करना है? कंबाइंड स्थिति का। मनुष्य के हृदय में सबसे गहरी प्यास कौन सी है? मिलन की। उसे मिलन चाहिए, पर यह मिलन परमात्मा से मिलन की प्यास है। वो ये भूल गया इसलिए देह के मिलन में सारा जीवन बिता देता है, देह के मिलन की भाग दौड़ में। और वो कभी तृप्त नहीं हो पाता। क्यों ऐसा है? कि काम विकार ही महाशत्रु है, बाकी विकार इतने नहीं है। ऐसा क्या है उसमें? क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, क्यों? कोई आंसर आपकी तरफ से? क्योंकि काम में सबसे ज्यादा एनर्जी डिप्लीशन होता है, सबसे ज्यादा पश्चाताप, सबसे ज्यादा थकान, सबसे ज्यादा खालीपन, सबसे ज्यादा बेचैनी, डोपामिन डंपिंग। ऊपर जाता है ग्राफ और धड़ाम से नीचे आता है और फिर एक बेचैनी, फिर से वही वंस मोर की कामना से ही व्यक्ति मरता है। तो परम धाम में अनुभव करना है कि मैं क्या हूं, बाबा के साथ कंबाइंड हूं, अत्यंत प्योर है वो, मैं उस प्यूरिटी के साथ हूं। यहां मेरा कुछ भी हो पर मैं अभी यहां हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी सेम, कंबाइंड। और उसके कितने रूप है? 7 बिंदु। फिर से ऐसा करेंगे, याद है ना सबको? बिंदु, बीज, ज्योति, स्टार, सागर। ऐसे ऐसे तो फरिश्ता हो जाएगा, ऐसे ऐसे करो जरा। सूर्य और पहाड़, पहाड़ के रूप में देखना। वो स्वीट का पहाड़ है, मधुरता का पहाड़ है, उसका सब कुछ मधुर है। चलना मधुर, उठना मधुर, गाना मधुर, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, चलितम मधुरम, हसितम मधुरम, सब कुछ मधुर। उस मधुरता का अनुभव, तो अंदर जो कड़वाहट है ना वो कम होगी। आत्माओं के लिए कड़वाहट है ना, ये ठीक नहीं है, ये वो अच्छा नहीं है, इसने धोखा दिया, ये छोड़ के गया, इसका कुछ करना पड़ेगा। अमृत वेला अच्छी अच्छी टचिंग्स होती है, क्या करना है किसका? कहां से इतने अच्छे अच्छे टॉन्ट्स और कमेंट्स निकलते हैं? शायद अमृत वेला पावरफुल योग करते होंगे। हमारे अवगुणों पर लोगों ने पीएचडी की है, कहां से उनको ये गाइड, कौन है उनका थीसिस का टॉपिक, कहां से मिलता है उनको? तो कंबाइंड क्या करना है शिव बाबा से, कंबाइंड। और लास्ट पॉइंट, परम धाम के प्रति नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना है। नॉस्टैल्जिया अर्थात होम सिकनेस, होम सिकनेस अर्थात मुझे घर जाना है, यहां रहना नहीं है, मेरे लोग नहीं है, मेरा घर वो है। ज्यादा दिन अगर आप लोग यहां, अगर आपको एक साल तक रोक दिया गया तो क्या करोगे? नो एकोमोडेशन इशू, बोल दिया है आप ही रुकोगे, कोई आपको बोलेगा नहीं घर जाओ, खुद ही भाग जाएंगे शायद, नहीं रहेंगे। अरे वाह, तो मधुबन भी तो घर है। एच जी वेल्स ने एक कहानी लिखी है कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, 1904 में पब्लिश हुई थी स्टोरी। नुनेज नाम का एक पर्वतारोही है, इक्वेडोर माउंटेन पर चढ़ रहा है, काल्पनिक माउंटेन, अचानक पैर फिसलता है, नीचे गिर जाता है, एक नए जगत में वो अपने आप को पाता है। लोग यहां सारे अंधे है, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, आश्चर्यचकित होता है, अब मैं करूं क्या? उसे याद आता है, अरे ये तो मैंने सुना था कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है, ये वही लोग है। इटालियन आक्रमण, स्पैनिश आक्रमण से छिप के कुछ लोग एक स्थान पर आ गए थे, अर्थक्वेक हो गया, चारों तरफ से दीवारें ऐसी हो गई, पहाड़ पहाड़, कि वो इलाका दुनिया से कट ऑफ हो गया। और फिर एक दिन वहां एक बीमारी आ गई, उस बीमारी से सारे लोग अंधे हो गए और सारी जातियां पीढ़ी दर पीढ़ी अंधी पैदा होने लगी, और लास्ट अंधा व्यक्ति भी मर गया, और फिर सब अंधे थे। और ये नुनेज पर्वतारोही वहां पहुंचता है, उसे आश्चर्य होता है देखकर, और फिर लगता है अरे मैं उस दुनिया में आ गया। वो वहां के लोगों को समझाता है कि तुमको देखना चाहिए, दृष्टि एक चीज होती है। परिवार वहां के लोग बहुत नाराज होते हैं इससे, वो सब समझती है विक्षिप्त है, इसको बीमारी है देखने की, इसका माथा ठीक नहीं है। वो कई साल वहां रुकता है, पर वो उनको समझाता है, पर वो नहीं समझते क्योंकि वो इतने एडजस्टेड हो गए ब्लाइंडनेस के। फिर वो धीरे धीरे वहां, याकूब नाम का एक व्यक्ति होता है, वहां काम करने लगता है, उसकी एक बेटी होती है मदीना, उससे इसको प्यार हो जाता है, और वो कहता है कि मुझे प्यार करना है, शादी करनी है। गांव की मीटिंग होती है, वो कहते हैं लड़का तो अच्छा है पर उसका एक प्रॉब्लम है, ये देखता है, इसको दृष्टि की बीमारी है, ये जब देखो तब देखने की बातें करता है। तो गांव वाले निश्चित करते हैं पहले इसकी आंखें निकाली जाएगी फिर शादी होगी, परंतु इसका प्यार इतना ज्यादा होता है कि वो मान जाता है आखिरकार। परंतु जिस दिन शादी होने वाली होती उसी सुबह सुबह वो देखता है सूरज उग रहा है, और कहानी कहती है उसी सुबह वो वहां से भाग जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। एक दूसरा वर्षन है कहानी का जो कहता है उसमें कि वो उस मदीना को लेके, 1938 का एक दूसरा वर्षन है स्टोरी का, वो उसको लेकर चला जाता है। गांव वालों को बताता भी है कि अभी भूस्खलन होने वाला है, वो नहीं सुनते, पर वो उसके साथ भाग जाता है क्योंकि उसको प्यास होती है कि मुझे अपने घर पहुंचना है। उसको लगता है कि इस देश में आ गया हूं, यहां सब अंधे हैं, इनको समझाने से कुछ फायदा नहीं है, वो तो मेरी आंखें निकाल रहे हैं और मैं तैयार भी हो गया, ये कैसा भ्रम है, और वो घर की ओर भागता है। तो सेवेंथ पॉइंट कौन सा है? नॉस्टैल्जिया, होम सिकनेस, सेंटिमेंटलिज्म इसको कहते हैं, कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर में रुकना है, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। तो ऐसी है, कितनी बातें थी? सात। पहली विजुलाइज करना, उसको मन की आंखों से देखना कैसा है वो, लेटे लेटे सोते समय, रात को, दोपहर को, अलग अलग समय। दूसरा, परमधाम के अलग अलग नाम याद करना। तीसरा, आत्मा के स्वरूप को याद करना। चौथा, शिव बाबा को देखना अलग अलग रूपों में। अगला, वहां से बैठकर सकाश फैलाना। अगला, कंबाइंड, मैं उसके साथ कंबाइंड हूं, वो और मैं अलग नहीं है। अब क्राइस्ट से पूछा हु आर यू, वो कहता आई एम सन ऑफ गॉड। उससे पूछा वेर इज योर फादर, वो कहता मेरे पिता, माय फादर दैट आर्ट इन हेवन, हेवन में है। उससे पूछते हेवन कहाँ है, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन मी। फिर पूछते अरे तुम पुत्र हो, वो पिता है, वो स्वर्ग में है, और वो तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे हृदय में, आखिर संबंध क्या है तुम्हारा उसके साथ। और लास्ट एक वाक्य है बाइबल में जिसके लिए उसको सूली पर चढ़ा दिया, माय फादर एंड आई आर वन, मेरे पिता और मैं एक हूं। और लोग पत्थर उठाने लगते, ब्लास्फेमी, भगवान और तुम एक हो कहते हो। पर ये साधक की तीन अवस्थाएं हैं। पहली स्थिति, वो और मैं अलग, वो पिता मैं पुत्र। दूसरी अवस्था, आई एम इन हिम एंड ही इन मी, वो मुझ में और मैं उसमें। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, मतलब सर्वव्यापी हमने ही बनाया है, ऐसे ही नहीं बना हो। और तीसरा, वो और मैं क्या हूं, एक। ज्योति ज्योत समाये, संन्यास में कहते हैं, भक्ति में कहते हैं भक्त भक्ति और भगवंत, तीनों एक। और ब्रह्मा कुमारीज में बाप समान, ये तीनों ही अवस्था एक है। और संन्यास में निर्विकल्प समाधि, सविकल्प निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि बाप समान, भक्ति भगवान और भक्त एक, माय फादर एंड आई आर वन। हाईएस्ट स्टेज सब में सेम दिखाई है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अनुभव क्या करना है, कंबाइंड हूं मैं। अब वो पिता पुत्र वाला संबंध नहीं रहा है, एक ही है, जो वो है वो मैं हूं। ये कहां अनुभव करना है, परम धाम में। और लास्ट क्या बताया, एक प्यास, इनफ ऑफ दिस वर्ल्ड, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, आई हेट दिस वर्ल्ड, मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, दिस वर्ल्ड दिस ड्रीम दिस नाइटमेयर, ये एक दुस्वप्न है, नाइटमेयर है कि विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स। यहां लोग बहुत ही गोरे गोरे है पर दिल खोटे है सब, विथ इट्स हाउलिंग राइटियसनेस ऑन द सर्फेस एंड अट्टर हॉलोनेस विद इन। ऊपर से तो बहुत अच्छा अच्छा दिखता है पर भीतर सारे खोखले है, विथ इट्स ब्लैक गार्डिज्म एंड विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। सब बाजार है, बिकता है यहां सब कुछ, सारे रिश्ते बिकते हैं यहां पर। ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए, वैराग उत्पन्न करना है इस संसार के प्रति और उस संसार की ओर अपने आप को लेके जाना है। तो अभी हम एक अल्टीमेट लास्ट 5-6 मिनट की कमेंट्री है। एक बार ऐसे ही अमृत वेला हमें संकल्प आया था, एक नई बात कि परम धाम बोल रहा है तो वो क्या बोलेगा, मैं परम धाम बोल रहा हूं, ये लगभग 1-1.5 साल पहले लिखा था, उसी को AI में डाल दिया तो उसने उसका गीत बना दिया। तो सभी स्थिर, ओम शांति। और ये जो पॉइंट्स थे 7 इसमें डाले हुए हैं, तो इस क्लास के बाद में आपको ये दिए जाएंगे, ठीक है। इसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी दे देंगे, ताकि आप इसका अपने कमरे में लगा के रख देंगे तो ये याद रहेगा। रेड लाइट, सभी स्थिर एकाग्र।
हे आत्मन, स्वयं को देह नहीं, एक दिव्य चमकती ज्योति बिंदु समझ। अब अपने चंचल मन को एकाग्र करो, अपनी बुद्धि को मौन में स्थिर करो और उड़ चलो इस कर्म भूमि से पार, इन 5 तत्वों की दुनिया से परे, सूरज चांद और तारों से भी ऊपर, उस लोक की ओर जहां न दिन है न रात, न जन्म न मरण, केवल मौन है, शांति है, प्रकाश है। हां, वही है तेरा सच्चा घर, परम धाम, जहां शिव बाबा बैठे हैं तेरे स्वागत में, जहां हर आत्मा एक मणि की तरह चमकती है। अब चलो सुनो उस घर की आवाज, मैं घर तुम्हारा, अव्यक्तिक धारा,
रूहों का है जो अविनाशी बसेरा, मैं शांति धाम हूं अंतर मन का गीत, मौन की लहरों में बहता व्यक्त संगीत, मैं मुक्ति धाम जहां बंधन टूटे, जहां सब विकार एक क्षण में छूटे, मैं हूं निराकारी दुनिया जहां कर नहीं, ना रूप न रंग बस अनुभूति अनकही, मैं ब्रह्मांड हूं ब्रह्म से घिरा, निःशब्द का विस्तार शून्य से भरा, मैं मूल वतन आदि का ठिकाना, जहां से चले तुम रचने इतिहास सुहाना, मैं उसका घर जो सबका प्यारा, जिसको सब कहें बाबा हमारा, मैं असली घर आत्माओं का ठिकाना, आ जाओ अब तुमको है अपने घर आना, मैं तेरा स्वदेश तू मेरा वासी, छोड़ हदों को बन बेहद का सन्यासी, मैं वो आगार जहां रौनक रूहानी, जहां हर आत्मा लगे मनी नूरानी, मैं छठा तत्व पांच तत्वों से पार, ब्रह्म मेरा नाम फैला मेरा प्रकाश अपार, मैं पावन धाम जहां बहती पावन तरंगे, निर्विकार जहां खेलते दिव्य पतंगे, मैं विश्राम स्थल जहां रूह मुस्काए, मौन की गोदी में संसार खो जाए, मैं रूहानी तीर्थ जहां आत्मा नहाए, स्मृति की गंगा में मौन बहाए, मैं मीठा धाम मिठास जहां अव्यक्त की, जहां अनुभूति हो मधुरता के सागर की, मैं परलोक जहां समय भी थम जाए, जहां आत्मा शिव की गोद में समाए, मैं उचिते ऊंचा जहां बुद्धि भी न जाए, जहां मौन का संगीत हर आत्मा को भाए, मैं ज्योति लोक प्रकाश का गगन, हो जाओ यहां याद की लगन में मगन, मैं ही पर धाम अंतिम परम स्थान, तद धामम परमम कहे गीता भगवान, मैं ही शिव धाम मैं ही शिवालय, मैं ही अनंत धाम मैं ही केवल धाम, मैं ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धाम, मैं ही सत्य धाम मैं ही अतुल्य धाम, मैं ही अखंड धाम मैं ही वानप्रस्थ धाम, मैं ही सर्वोत्तम शिखर, मैं ही अंतिम गंतव्य, मैं ही हूँ परम धाम।